दिनकर की काव्य कृतियां। दिनकर की साहित्य प्रतिभा पद्य और गद्य दोनों में समान है। ये जितने सफल कवि हैं उतने ही सफल गद्य लेखक भी। इनकी पद्य और गद्य की कुल कृतियां अब तक 28 प्रकाशित हो चुकी हैं। यहाँ पर इनकी केवल काव्य कृतियों का उल्लेख अपेक्षित है। पहला, बारदोली विजय, प्रकाशन काल 1928 ईस्वी। दूसरा, प्रणभंग, खंड काव्य 1930 ईस्वी। तीसरा, रेणुका 1935 ईस्वी। चौथा, हुंकार 1938 ईस्वी। पांचवा, रसवंती 1939 ईस्वी। छठा, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी। सातवा, सामधेनी 1946 ईस्वी। आठवा, धूप छांह 1946 ईस्वी। नौवा, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी। दसवा, बापू 1947 ईस्वी। ग्यारहवा, इतिहास के आंसू 1952 ईस्वी। बारहवा, धूप और धुआं 1953 ईस्वी। तेरहवा, रश्मि रथी 1953 ईस्वी। रेती के फूल 1954 ईस्वी। पंद्रहवा, नील कुसुम 1955। सोलहवा, उजली आग यह गद्य काव्य है 1956 ईस्वी। सत्रह, नीम के पत्ते 1956 ईस्वी। अट्ठारह, दिल्ली 1956 ईस्वी। 19, सीपी और शंख यह अनुदित कविता संग्रह है 1957 ईस्वी। 20, नए सुभाषित यह सुक्ति संग्रह है 1957 ईस्वी। 21, उर्वशी गीति नाट्य 1961 ईस्वी। इसके अतिरिक्त चक्रवाल नाम से इनका एक काव्य संग्रह भी है जिसमें रेणुका से लेकर नील कुसुम तक की चुनी हुई कविताएं हैं। इनका प्रकाशन काल सन 1956 ईस्वी है। यहाँ पर कवि की प्रमुखतम कृतियों का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है ताकि कवि की विकास प्रक्रिया को समझ लिया जाए। रेणुका। रेणुका में संग्रहित कविताएं 3 खंडों में विभाजित हैं। व्योम कुंजों की पर्यायी कल्पने, गा रही कविता युगों से मुग्ध हो, और फूंक दे जो प्राण में उत्तेजना। इस संग्रह की समस्त कविताओं में कवि की 5 प्रकार की भावनाएं परिलक्षित होती हैं। पहला, प्रगति भावना। दूसरा, राष्ट्रीय भावना। तीसरा, श्रृंगार भावना। चौथा, अध्यात्म भावना। पांचवा, प्रकृति चित्रण की भावना। रेणुका का कवि इस विषमतापूर्ण और पीड़ित संसार में समता तथा सुख लाने का इच्छुक है। जिस प्रकार साकेत के राम इस भूतल पर स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आते बल्कि इस भूतल को ही स्वर्ग बना देना चाहते हैं, उसी प्रकार रेणुका का कवि कल्पना का वैभव त्याग कर इसी धारा को अलका पूरी देखने का अभिलाषी है। व्योम कुंजों की परी ऐ कल्पने, भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा नहीं, उड़ न सकते हम धुमैले स्वप्न तक, शक्ति हो तो आ बसा अलकाए हैं। कवि कल्पना का सामाजिक बन जाना प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है। प्रगतिवादी समाज के पुनर्निर्माण के लिए वर्तमान समाज का ध्वंस आवश्यक मानता है। रेणुका का कवि ही अपनी कविता से जग में ज्वाला सुलगाने की प्रार्थना करता है। कांत धात्र कविते जाग उठ, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत कवि का वर्तमान के प्रति असंतोष और अतीत के प्रति अनुराग व्यक्त हुआ है। अतीत के प्रति अनुराग प्रदर्शन भी राष्ट्रीय कवियों की परंपरा सी रही है। यह भावना प्राय 2 रूप में प्रकट होती है। एक तो विद्रोह के रूप में, जहाँ कवि वर्तमान के ध्वंस की कामना करता है। रेणुका में तांडव कविता इसी रूप का प्रतिपादन करती है। नाचो हे नाचो नटवर, चंद्र चूड़ त्रिनयन गंगाधर, आदि प्रलय अवढ़र शंकर, नाचो हे नाचो नटवर। दूसरा रूप है अतीत की गौरव गाथा का काम। उदाहरणार्थ रेणुका के हिमालय कविताएं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, रे कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के, वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। किंतु इस विद्रोह में भविष्य निर्माण की कोई योजना परिलक्षित नहीं होती, केवल कवि का वर्तमान के प्रति असंतोष और तज्जन्य क्रंदन ही स्पष्ट मुखरित है। रेणुका में कवि की श्रृंगार भावना को ही अभिव्यक्ति मिली है, किंतु यह भावना छायावादियों के सिकुंठित अधोमिल नहीं बल्कि स्वस्थ संतुलित स्पष्ट है। यथा, पनघट से आ रही पीत वसना युवती सुकुमार, किसी भांति ढोती गागर यौवन का दुर्वह भार, बनूंगी मैं कवि इसकी मांग कलश काजल सिंदूर सुहाग, यह कवि की कविता की पुकार है। श्रृंगार का यह वर्णन स्वस्थ और संयमित होने के साथ साथ उदात्त भी है। रेणुका की अध्यात्म भावना किसी गंभीर चिंतन की परिणति नहीं, बल्कि इसमें साधारण और स्वाभाविक दार्शनिक विचारों को ही व्यक्त किया गया है। जैसे जीव और ब्रह्म का उल्लेख, सृष्टि की नश्वरता, संसार का अंत दुखमय है आदि। जीवन और यौवन की नश्वरता का यह वर्णन देखिए, जीवन का मधमय उल्लास और यौवन का हास विलास, रूप राशि का यह अभिमान एक स्वप्न है, स्वप्न अज्ञान। रेणुका में प्रकृति का प्रयोग प्रायः राष्ट्रीयता की भावना से आविर्भूत विद्रोह, अध्यात्म भावना और श्रृंगार भावना को अभिव्यक्ति देने के लिए किया गया है, यथा विद्रोह के लिए। धधक उठा तेरे मरघट में जिस दिन सोने का संसार, एक एक कर लगा दहकने मगध सुंदरी का श्रृंगार। जिस दिन जली चिता गौरव की जय भेरी, जब मूक हुई जमकर पत्थर हुई, न क्यों यदि टूट नहीं दो टूक हुई। पाटलिपुत्र की गंगा से अध्यात्म भावना। एक बात है सत्य की, झर जाते हैं खिलकर फूले यहाँ, जो अनुकूल वही बन जाता दुर्दिन में प्रतिकूल यहाँ। मैत्री के शीतल कानन में छिपा कपट का शूल यहाँ, कितने कीटों से सेवित है मानवता का मूल यहाँ। इस उपवन की पगडंडी पर बचकर जाना परदेशी, यहाँ मेनका की चितवन पर मत ललचाना परदेशी। परदेशी कविता से श्रृंगार भावना। मुक्ता कुंतल में गूंथ शुक्र का पहन कुसुम कर्णाभूषण, दिग्वधु क्षितिज पर बजा रही मंजीर चपल कंप रहे चरण। रुनझुन रुनझुन किसका शंजन, अमा संध्या से। यदि इन पांचों भावनाओं का विश्लेषण किया जाए तो कहा जा सकता है कि प्रगति और राष्ट्रीय भावना कवि की समष्टिगत भावना की अभिव्यक्ति है और श्रृंगार तथा अध्यात्म भावना व्यष्टि की। प्रकृति चित्रण की भावना में दोनों भावनाओं का समष्टि अभिव्यक्ति का समन्वय है। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि कवि युगीन परिस्थितियों से बाध्य होकर अपनी समूह भावना को पोषित तथा कोमल भावों को नियंत्रित करने में प्रयत्नशील है। उसके युवा हृदय में इन दोनों भावनाओं का द्वंद्व चलता है, जिसमें अंत में समाज भावना की विजय होती है। व्यष्टि के निरोध एवं समष्टि के ग्रहण के ही दो रूप राष्ट्रीय तथा प्रगतिवादी बनकर उसके काव्य में अवतीर्ण हुए। हुंकार। रेणुका में कवि के मन में व्यष्टि और समष्टि का जो संघर्ष प्रारंभ हुआ है, हुंकार में प्रायः समाप्त सा हो गया है। समष्टि व्यष्टि को पराभूत कर लेती है और कवि की वाणी वर्तमान की दयनीय दशा के प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोह कर उठती है। समय ढूह की ओर से सकते मेरे गीत विकल धाए, आज खोजते उन्हें बुलाने वर्तमान के पल आए। इसीलिए कवि श्रृंग छोड़ मिट्टी पर उतर आता है। व्योम कुंजों की परी कल्पना प्राणों में उत्तेजना फूंकने के लिए आतुर हो उठती है। वह कल्पना की जाली बुनने वाले कवियों को चुनौती दे देता है। अमृत गीत तुम रचो कलानिधि, बुनो कल्पना की जाली, तिमिर ज्योत की समर भूमिका मय चारण मय बैताली। इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि रेणुका के जिस विद्रोह में निराशा के कारण ध्वंस को निमंत्रण दिया जाता है, हुंकार में वही विद्रोह आशा और नवीन प्रकाश में समुज्ज्वलित हो उठा है। कवि की वाणी जागरूकता, ज्योति और विशुद्ध छात्र धर्म का बल लेकर बोलने लगी है। धर कर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वहीं उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। पड़ी समय से होड़ खींच मतलबों के कांटे रुककर, फूंक फूंक चलती न जवानी चोटों से बचकर झुककर। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुनके मतवाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती पड़ते पद में जब छाले हैं। यहाँ कवि का विद्रोह चरम कोटि पर पहुंचा हुआ दिखाई देता है। वह केवल उन्हें ही एक बार नहीं शत बार नमन करना चाहता है जिनके दृढ़ चरण रण की ओर बढ़े, लेकिन मन के पीछे करुण पुकार छिपी हुई हो। इसीलिए कवि को दिल्ली का वैभव ही फूटी आंखों नहीं सुहाता। वह उसे ब्रिटिश की दासी और परकिया की संज्ञा देने में ही संकोच नहीं करता। तू वैभव मद में इटलाती, परकियासी सैन चलाती, री ब्रिटेन की दासी किसको इन आंखों पर ललचाती। कहने का भाव यह है कि हुंकार में कवि के सबल विद्रोह की सशक्त हुंकार है। कवि रेणुका में देश की जिस दुर्दशा पर रोया था, हुंकार में उसी का विद्रोह कर उठता है। अतः रेणुका में जिस भाव का जन्म हुआ, हुंकार में वह यौवन को प्राप्त हुआ। इसलिए यदि रेणुका का हुंकार की पीठ था या भूमिका कहा जाए तो अनुचित न होगा। रसवंती। रेणुका में कवि की जो श्रृंगार भावना अंकुरित हुई थी, हुंकार में आकर वह ओजस्वी छात्र धर्म शामिल हो गई थी, किंतु यह शमन रसवंती में अपना पूर्ण प्रवाह लेकर बह निकला। संभवतः गीत शिशु नामक कविता में कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में इसी तथ्य की ओर संकेत किया है। बड़े यत्न से जिन्हें छिपाया एवे मुकुल हमारे, जो अब तक बच रहे किसी विध्वंसक इष्ट प्रलय से। हुंकार के हुंकार में से श्रृंगारिक गीत किस प्रकार बच रहे स्वयं कवि को इसका पता नहीं, लेकिन वह विधि सहज प्रक्रिया के अतिरिक्त और क्या हो सकती है, अर्थात दमित काम भावना नष्ट नहीं हुआ करते, वे अवसर पाकर फूट ही पड़ती हैं, यही सहज प्रक्रिया है। इसीलिए रसवंती में किसी निश्चित उद्देश्य का अभाव है, केवल कवि मानस की प्रसन्नता है इसका कारण है। रसवंती का कवि प्रकृति को ही अपनी श्रृंगार भावना के अभिव्यक्ति का साधन बनाता है। हुंकार का कवि रसवंती का प्रणेता नहीं हो सकता, यह सहज ही कहा जा सकता है, क्योंकि एक में समष्टि की चरम सीमा है और दूसरे में व्यष्टि की पराकाष्ठा। पतझड़ की सारिका में कवि इसी शंका का समाधान करता है। जग तो समझता है यही पाषाण में कुछ रस नहीं, पर गृह हृदय में ज्ञान व्याकुल निर्झरों का वास है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने दमित काम वासनाओं की ईमानदारी के साथ स्वीकृति ही नहीं दी, बल्कि एक शाश्वत सत्य की प्रतिष्ठा भी की है। अतः दिनकर की आलोचकों का रसवंती को कुछ विस्मय और उन्मन के साथ अपनाना केवल कवि के प्रति ही अन्याय नहीं, वरन एक शाश्वत सत्य की सत्यता को ही झुठलाना है। रेणुका में जिस कविता ने उड़ू के नील कुंजों में स्वप्न न खोजने की, चमेली में चंद्र किरणों से चित्र न बनाने की, अधरों में मुस्कान और कपोलों में लाली न बन जाने की कसम खाई थी, ताहुंकार में जो युवधर्म की पुकार बनी, प्रकृति पक्ष को लेकर रक्त शोषणी संस्कृति को जिसने ललकारा, अपना लक्ष्य विचार कर युग पर जिसने अपने तन बंधन को समर्पण किया और जिसने कवि के महायज्ञ की आहुति तैयार की, वही कविता रसवंती में आल्हा गाते हुए प्रेमी की राधा को घर से खींच कर चोरी चोरी नीचे खड़ी करने लगी। दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, चोरी चोरी उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। कहने का भाव है कि रसवंती निर्विवाद रूप से कवि के श्रृंगारिक भावों की स्पष्ट और सहज अभिव्यक्ति है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के शब्दों में यदि पक्षियों के साधन से कहना चाहें तो रेणुका में चातक की चेतना प्रमुख है और हुंकार में शेन यानी बाज का शौर्य, रसवंती में तो कोकिल की काकली है। द्वंद्व गीत में अध्यात्म भावना और व्यक्ति समष्टि के द्वंद्व की प्रधानता है। इसमें ईश्वर, आत्मा, जीवन और मृत्यु आदि पर विचार व्यक्त किए गए हैं। जिस प्रकार कबीर आदि भक्त कवियों ने ब्रह्म की सर्वव्यापकता स्वीकार की थी, सर्वत्र अपने लाल की लाली देखी थी, उसी प्रकार द्वंद्व गीत का कवि भी सृष्टि के प्रत्येक कण में उसी माली का रूप और प्रभाव देखता है। किरणों के दिलचीर देख सब में दिन मन की लाली रे, चाहे जितने फूल खिले पर एक सभी का माली रे। जीवन और मृत्यु के विषय में भारतीय दर्शन पुनर्जन्म का दृढ़ता से प्रतिपादन करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष इस सिद्धांत का आख्यान किया था, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितु मर्हसि। यही मान्यता द्वंद्व गीत में व्यक्त की गई है। जीवन की कल मृत्यु बनेगा और मृत्यु ही नव जीवन, जीवन मृत्यु बीच तब क्यों द्वंद्वों का यह उत्थान पतन। संसार अस्थिर है, अतः इसमें पनपने वाला जीवन भी क्षणभंगुर है। जिस यौवन पर व्यक्ति मदांध हो जाता है वह यौवन भी ठहरता कितने दिन है। दो नीड़ों को छिपा रही मदमाती आंखें लाल सकी, अस्थि तंतु पर ही तो है एक खिले कुसुम से गाल सकी, और कुछों के कमल झरेंगे ये तो जीवन से पहले, कुछ थोड़ा सा मांस प्राण का छिपा रहा कंकाल सकी। आत्मा का स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण ही मनुष्य भटकता रहता है और जीवन मरण के चक्र में पड़ा रहता है। साथ ही कवि ने कुछ व्यवहारिक शंकाएं भी प्रस्तुत की हैं, जैसे यदि जीवन असत्य है तो यह पाप पुण्य का बंधन क्यों है, यदि जीवन सत्य है तो यह मिथ्या स्वप्नों में क्यों भटकता रहता है, यदि आत्मा नित्य और निर्लिप्त है तो इन धर्म शास्त्रों की क्या आवश्यकता है, और यदि ईश्वर अचिंत्य है तो उसके चिंत्य रूप का अन्वेषण तथा उसकी आराधना पूजा के प्रति क्यों है, जो सृजन असत्य पुण्य पाप का श्वेत नील बंधन क्यों है, स्वप्नों के मिथ्या तंतु बीच आबद्ध सत्य जीवन क्यों है, हम स्वयं चिंत निर्लिप्त अरे तो क्यों शुभ का संदेश हमें, किस चिंत रूप का अन्वेषण यह आराधन पूजन क्यों है। यहाँ पर यह भी उल्लेख है कि द्वंद्व गीत का दर्शन प्रतिपादन शुष्क नहीं बल्कि सशक्त और अनुभूतिपूर्ण है। संसार के विरोधी प्रतीत होने वाले विभिन्न तत्वों में रागात्मक सामंजस्य उत्पन्न करने का हार्दिक प्रयत्न यहाँ दृष्टिगोचर होता है, बुद्धि से उसके शमन का प्रयास बहुत कम। द्वंद्व गीत का दर्शन सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक है, उसी कारण सरस एवं सुगम भी। द्वंद्व गीत में कवि के दार्शनिक और समन्वयवादी भावना ने सामधेनी और कुरुक्षेत्र की रचना के लिए कवि के मन में बीज डाल दिए। सामधेनी द्वंद्व गीत में कवि के मन में व्यष्टि और समष्टि का जो द्वंद्व प्रारंभ हुआ था वह सामधेनी में आकर अवसान प्राप्त कर लेता है। व्यष्टि पर समष्टि की पूर्ण विजय हो जाती है, कवि की भावनाएं समष्टि मय बन जाती हैं। जिस प्रकार संत कबीर ने अपनी विरक्ति की उद्घोषणा करते हुए कहा था कि जो घर फूके आपणों चले हमारे साथ, उसी प्रकार सामधेनी का रचयिता भी अपनी क्रांति की भावनाओं से अभिभूत होकर इसी प्रकार का आह्वान करता है, मेरी पूंजी है आग से जलना हो बढ़े निकट आए। सामधेनी का कुरुक्षेत्र की रचना में महत्वपूर्ण योग है। जो युद्ध की समस्या कवि के मन में सामधेनी की कलिंग विजय कविता लिखते समय आविर्भूत हुई थी, वही समस्या तो कुरुक्षेत्र की आधारशिला है। यही कारण है कि कलिंग विजय और कुरुक्षेत्र के कुछ अंशों में बहुत ही भाव सामने हैं। जिस प्रकार महाभारत को जीत लेने के पश्चात युधिष्ठिर के मन में भयंकर ग्लानी होती है, उन्हें अपने कृत्य पर गहन पश्चाताप होता है, उसी प्रकार महाराज अशोक भी कलिंग को जीतने के पश्चात युद्ध का क्या परिणाम हुआ यही सोचते हैं, सोचते इस बंधुवध का क्या हुआ परिणाम, विश्व को क्या दे गया इतना बड़ा संग्राम। और जिस प्रकार से स्वप्न में वे सुयोधन आदि की बातों को सुनते हैं तो उनका पश्चाताप द्विगुणित हो जाता है, कलिंग विजय में भी कोई अदृश्य शक्ति अशोक को सत्य का संदेश देती है। कहने का भाव यह है कि इन दोनों कृतियों की पृष्ठभूमि में बहुत कुछ साम्य है। स्वयं कवि ने कलिंग विजय की कुरुक्षेत्र से संबद्ध महत्ता इन शब्दों में स्वीकार की है। बात यूँ हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया और कलिंग विजय नामक कविता लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या सारी समस्याओं की जड़ हो। इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए मैंने युधिष्ठिर को देखा जो विजय इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में छिपी हुई लाशों से तोड़ रहे थे। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत की प्रख्यात कथा का एक महत्वपूर्ण अंश ग्रहण करके उसे युवानुरूप कल्पना से मंडित किया गया है। जब महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो जाता है और विजय श्री युधिष्ठिर को मिल जाती है तो युधिष्ठिर का मन खिन्न हो जाता है। वे असंख्य वीरों की भूमि से विचलित होते हैं, वीरों की मृत्यु से विचलित होते हैं, उनका मन वैराग्य और विरक्ति की भावनाओं से भर जाता है। वसुधा का राज्य उनके लिए विश्रादाहक बन जाता है। अपने मन के इस द्वंद्व को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं जो बाणों के शैया पर लेटे हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर की वैराग्य भरी बातों को सुनकर पितामह को हंसी आ जाती है और वे अनेक प्रकार से युधिष्ठिर के द्वंद्व का शमन करते हैं। वे शुद्ध युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि युद्ध के प्रेरक तत्व कुशासन है, इसीलिए इसमें कुशासन की भर्त्सना और सुशासन की संस्तुति की गई है। नृपति चाहिए क्योंकि परस्पर मनुज लड़ा करते हैं, खड्ग चाहिए क्योंकि न्याय से वीन स्वयं डरते हैं। यूं तो कुरुक्षेत्र में प्रसंग वश अनेक विषयों की चर्चा है किंतु इसका सर्वप्रमुख प्रतिपाद्य है साम्यवाद की स्थापना। कवि का विश्वास है कि जब तक मनुष्य को बराबर जीने का अधिकार और साधन नहीं मिल सकते तब तक समाज में सच्ची शांति और व्यवस्था नहीं हो सकती। इसीलिए वह कहता है सबको अधिकार मृत्यु का पोषक रस पीने का, विविध प्रभावों से अशंक होकर जगने जीने का। कुरुक्षेत्र का दूसरा प्रमुख प्रतिपाद्य है विज्ञान। आज समूचा संसार इस तथ्य से अवगत है कि विज्ञान का प्रयोग निर्माण के लिए नहीं विध्वंस के लिए हो रहा है। कवि की दृढ़ धारणा है कि इसका कारण हृदय और मस्तिष्क का असंतुलन है, इसीलिए जब तक इन दोनों का समुचित समन्वय नहीं हो जाता तब तक मनुष्य के मन से हिंसा और पाशवी वृत्ति समाप्त नहीं की जा सकती। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हो देवता चित्कार। इस प्रकार अन्य अवांतर प्रसंगों के साथ साथ कुरुक्षेत्र में आज के युग को भीषणतम युद्ध की समस्या का बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया गया है। उर्वशी। उर्वशी दिनकर की नवीनतम कृति है। इसमें प्रागैतिहासिक काल के पूर्वा उर्वशी प्रेमाख्यान द्वारा मानव मन की प्रमुखतम समस्या काम का विश्लेषण किया गया है। यही कृति हमारी आलोच्य है, अतः इसके विषय में यहाँ अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।